उसमें आला से आला, जिसके पास कुछ पैसा नहीं है ना, वो उससे भी पूछेंगे आपकी ख्वाहिश क्या है कि आपका घर कहाँ हो, तो वो कोई आला लोकेलिटी ही बताएगा, ऐसी लोकेशन जहाँ पे जबरदस्त घर हो, दिल करता है कोई मेंशन हो हमारा। तो ये वाली जो डिजायर्स हैं ये जन्नत के लिए होनी चाहिए कि यहाँ पे तो गुजारा हो ही जाएगा, यहाँ पे तो दो कमरे के घर में, छोटे से घर में भी रह लूंगी तो गुजारा ही करना है, यहाँ पे तो गुजारा होगा, ये तो सराय है, ये तो मुसाफिर की एक वो ट्रांजिट पीरियड है जो उसको मिला हुआ है, जिससे गुजर के उसने आगे जाना है, मंजिल तो कोई और है, मंजिल पे घर सही होना चाहिए। यहाँ पे VIP बन के बैठ जाए और वहां पे जाके बिल्कुल ही फकीर हो तो क्या फायदा उसका। तो मंजिल जो हमेशा की है, जहां का एक दर्जा दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा डिफरेंस नहीं जैसा दुनिया में है, दुनिया में एक बंदा साइकिल चला लेगा, दूसरा मोटर बाइक चला लेगा, तीसरा गाड़ी चला लेगा, तो चौथा जो है वो कोई जहाज चला लेगा, ये फर्क है ना, इतना ज्यादा तो फर्क नहीं है। हाँ बहुत लगता है कि जो है बड़ा है, लेकिन कितनी देर का, और पहुंचते सारे उसी जगह पे, किसी ने यहां से किसी न्यूयॉर्क जाना हो तो सारे पहुंच वहीं जाएंगे, कोई इकोनॉमी क्लास में भी बैठा तो वहीं पहुंच जाएगा, यहाँ पे तो यही क्लासेस है ना, कोई बिजनेस क्लास में बैठ जाता तो पहुंचना तो उसने भी वहीं है, थोड़ी देर की लग्जरी उसको मिल गई, थोड़ी देर की डिस्कम्फर्ट पीछे वाले को मिल गई। लेकिन आप देखिए आखिरत का मामला ऐसा नहीं है, आखिरत के मामले में बहुत बड़ा दर्जों का फर्क है, और एक ही जगह नहीं पहुंचना, उसकी रेजिडेंस कहाँ, वो ऊपर जैसे आसमान के सितारे कितनी दूर है ना सितारे, इस तरह एक दर्जे वाला दूसरे दर्जे वाले को देखेगा, और 100 दर्जे हैं जन्नत के, 100 दर्जे, ये तो एक से दूसरे का डिफरेंस है, और पहले से 100वें का कितना डिफरेंस होगा। लेकिन हम इतने मुतमईन हो जाते हैं, नहीं नहीं वो तो उन दर्जों पे तो हम पहुंच ही नहीं सकते, वो तो अंबिया के दर्जे हैं, ये दर्जे हैं, हम कहां वो पहुंच सकते हैं, लिहाजा बेयर मिनिमम पे ही बैठे रहो। नहीं, आप दुनिया में जब इतनी कोशिश करते हैं कि मेरी जितनी सकत है मैं बेस्ट से बेस्ट ही घर ले लूं, कोई बेचारा एक बिल्कुल ही गरीब बस्ती में रहता है उसको दिल करता है इससे तो ऊपर चला जाऊं, कोई उसमें रहता है तो कहता है मैं इससे ऊपर चला जाऊं, क्या बात है कि जन्नत के दर्जों के मामले में हम अगर टॉप का जन्नतुल फिरदौस तक का हम वो अंबिया वाला दर्जा नहीं पा सकते तो कम से कम उसे नीचे वाले की कोशिश कर ले। लेकिन तो हम तो पहले दर्जे पे बैठ के ही सोचते हैं कि ना बस इतना ही मिल जाए ना तो काफी है। तो वो वहां पर कैसे जेवर पहनाए जाएंगे, अदना मोती ऐसा है कि मशरिक से मगरिब तक आलम को रोशन कर दे। और मुफसरीन ने फरमाया कि हर जन्नती के हाथ में कंगन पहनाए जाएंगे, एक सोने का, एक चांदी का, एक मोतियों का। अल्लाह अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे, ये जो इसके रेशमी लिबास के बारे में जो आगे आ रहा है, वाली बासुम फिया हरीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके ये रेशमी लिबास दुनिया में ना पहनो और सोने चांदी के बर्तनों में ना खाओ पियो और ना उनकी प्लेट खाने में इस्तेमाल करो, क्योंकि ये चीजें दुनिया में काफरों के लिए और तुम्हारे लिए आखरत में है, जन्नत में। यानी जिसने दुनिया में रेशम पहन लिया वो आखरत में नहीं पहनेगा, जिसने दुनिया में ये दुनिया की शराब पी ली वो आखरत की शराब से महरूम हो जाएगा। तो वो इतने वहां पे खुश होंगे। अच्छा, और जेवर पहनना, जेवर आप जेवर और ऐसे इतने इतने सोने और मोतियों के पहन के आप कभी जॉब पे नहीं जाते, या आपने घर में काम करने बर्तन धोने हैं तो आपको भी सोने और वो रेशम और इस तरह के मोतियों के जुड़ाव अपने सारे सेट पहन के खड़े नहीं हो जाते, खास तौर पे अपने कड़े वगैरह पहन के नहीं खड़े हो जाते, मैंने तो अभी बर्तन धोने हैं। आप ये कब पहनते हैं, जब कोई सेलिब्रेशन होती है, जब आप आराम से बैठते हैं, जब आपका पार्टी टाइम होता है तब आप पहनते हैं ना। तो इसका मतलब है कि जन्नत में आराम ही आराम है, वहां पे कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कहीं बर्तन नहीं धोने, कहीं घर की सफाइयां नहीं करनी, ये जेवर पहन के आप ये काम नहीं करते कभी ना। तो इससे पता चलता है कि वहां पर बिल्कुल लग्जरी की लाइफ है, वहां पे ऐसी लाइफ है जिसके अंदर किसी को भी कोई मेहनत नहीं करनी, कोई मुशक्कत नहीं है। आगे भी ये बात आ रही है, लेकिन कोई मेहनत, कोई मुशक्कत, कोई कामकाज नहीं है, सिर्फ सेलिब्रेशन, सिर्फ फन, सिर्फ आराम ही आराम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको सोने और चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे जिनमें मोती और याकूत जड़े हुए होंगे, और इन पर बादशाहों की तरह ताज होंगे। इनके चेहरे मर्दों के बगैर बालों के होंगे, और इनकी आंखें जैसे सुरमा लगी हुई होती हैं। और ये जेवर कहाँ तक होगा? जहां तक इंसान के वुजू का पानी पहुंचता है वहां तक जेवर होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और ये भी अल्लाह ताला का फजल है, इसका करम है, वरना इंसान इस काबिल नहीं कि उसको ये मकाम मिले। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जिसको उसका अमल निजात दे। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप भी नहीं? आपने फरमाया, मैं भी नहीं, बस मेरे अल्लाह की रहमत ही है जो मुझे ढांप लेगी। وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن, تو وہ کہیں گے اس دن الحمد للہ۔ الحمد للہ کیا ہے؟ کلمہ شکر کا بھی ہے اور تعریف کا بھی ہے۔ دیکھیں, ایک ہے صرف شکر, لیکن حمد کے اندر شکر بھی اور تعریف بھی ہے۔ شکر تو ہم اس کا بھی ادا کر لیتے ہیں جس جو کو تعریف کے قابل ہے, مثلا کسی نے ہمارا کام کیا ہم اس کا شکریہ ادا کریں, لیکن وہ اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری کچھ نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, وہ ایک میڈیوکر سا بندہ ہے۔ اب ہم نے اس کے احسان کی وجہ سے اس کا شکریہ ادا کیا, مگر وہ قابل تعریف نہیں۔ حمد اس کی ہوتی ہے جو کامل ہو, جس کی صفات کامل ہوں, اس کی تعریف کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے, دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو کامل تو اس کائنات میں کوئی ہستی ہے نہیں, کامل تو کوئی مکمل ہے نہیں, اس لیے تعریف حمد جو ہے نا, حمد اسپیسیفکلی, آپ لوگوں کی تعریف کر سکتے ہیں, آپ ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں, لیکن حمد نہیں کسی کی کر سکتے سوائے اللہ کے, یاد رکھیں۔ اس لیے کہ کامل صفات کا مالک, کامل صفات کا مالک, جس کی کسی صفت میں کوئی کمی نہیں, کوئی فلو نہیں, کوئی ویکنس نہیں, ہر طرح سے وہ مکمل ہے, اس کو کہتے ہیں حمد, ایسی تعریف کو۔ تو اسی لیے حمد صرف اللہ کے لیے ہے, تو وہ الحمدللہ کہیں گے, کہیں گے یہ نہیں کہیں گے ہماری حمد ہو, ہماری تعریفیں ہوں, ہم آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف, میں نے کتنی زبردست کام کیا, نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی حمد کریں گے, وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کریں گے۔ اچھا یاد رکھیے گا, یہ سبھی مسلمان ہیں, یہ سبھی ایمان والے تو ہوں گے, چاہے وہ ظالم لنفسی ہیں۔ اس سے ہمیں خوارج جو کہتے تھے نا کہ جو مسلمان کبیرہ گناہ کر لیتا ہے وہ جہنمی ہے, وہ کافر ہے, وہ جہنمی ہے, ہمیشہ کی جہنم ہے اس کے لیے, اس کی نفی یہاں پہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو ظالم لنفسی ہی ہیں, انہوں نے گناہ کیے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی ان سے ہوئے ہیں, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے تو کافر جب مسلمان کو نکال لیا جائے گا, چاہے کتنی بھی عرصے بعد نکالا جائے, تو ربا ماں کے ساتھ چوربا پارا شروع ہوتا ہے نا, تو وہی تو ہے, اس میں ہی تو ہے کہ کافر تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج کم از کم اب تو جا کے نکال لیے جاتے, ہماری سزا تو ختم ہو جاتی, کیونکہ ان کی تو سزا کبھی بھی نہیں ختم ہونی۔ تو اس لیے ایمان بہت بڑی چیز ہے, ایمان بہت بڑی چیز ہے جس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس لیے کہ ایک نہ ایک دن ایمان ہی ہے جو انسان کو جہنم سے بھی نکالنے والا ہوگا۔ تو وہاں پر جا کر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گے۔ اور کیا, الذی اذهب عنا الحزن, कि वो रब जिसने हमसे गम को दूर कर दिया, क्या गम था उनका, क्या बेचैनी थी उनकी कि पता नहीं हशर में जो परेशानी उनको हुई, या जो जो हिसाब किताब जिनसे लिया गया, या जिस जिसको जहन्नुम में डाला गया तो अब इससे निजात पा ली, या दुनिया के जो गम थे वो भी हमसे दूर हो गए। तो हर किस्म का स्ट्रेस और हर किस्म की टेंशन उससे अब ये मुकम्मल आज़ाद हो गए। और देखिए ना, गम जो है इस दुनिया में इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। इस दुनिया में कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं गम से आज़ाद हूँ, कोई इंसान भी नहीं। और अगर किसी को कोई दुनिया का गम नहीं भी है ना, यानी कोई लोग होते हैं बड़ा ईमान है उनका, वो गम को ले ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक गम तो सारे ईमान वालों के साथ भी चिमटा हुआ है, और वो ये कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा आखरत में, पता नहीं हमारी नस्लें ईमान के ऊपर रहेंगी कि नहीं। देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ना सुभान अल्लाह अपनी नस्लों के लिए, जब उनको अल्लाह ताला फरमाता है ना अल्लाह ताला सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, तो वो फौरन कहते हैं वो मिन ज़ुर्रियती, और मेरी नस्लों में से भी, मेरे बच्चों में से भी। अल्लाह इंसान को कितना अपनी औलाद का फिक्र और गम रहता है, उनकी परेशानी रहती है, उनके जो दुनिया की परेशानियां वो तो लगी रहती हैं, उनकी आखरत की परेशानी इससे भी ज़्यादा होती है कि अल्लाह इनको जो है ये ईमान पे रहें, अल्लाह ये नेक बन जाए, सिराते मुस्तकीम पे चलें। तो देखें ये हुजन कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। और सूरह इंशिकाक में है ना उन लोगों के बारे में जो ईमान वाले थे, जिनको दाएं हाथ के अंदर आमालनामा पकड़ाया गया, तो उसके अंदर आता है कि वो फिर अपने घर वालों के अंदर आएंगे खुशी के साथ। लेकिन जिनको वरा ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे आमालनामा दिया गया, वो अपने घर वालों में बड़े मस्त रहते थे, बड़े मगन रहते थे, बड़े खुश रहते थे, उनको कोई वो नहीं थी परवाह। तो इसका मतलब जो मोमिन है ना उसके अंदर से ये गम कभी उसके अंदर से जाता ही नहीं, वो हमेशा एक फिक्र में रहता है। उसने तो जब तक पुल सिरात नहीं पार कर लेना ना, उसकी जान हमेशा अटकी रहती है कि पता नहीं अब क्या बनेगा। अपने लिए सबसे पहले इंसान को पहले अपनी फिक्र होती है ना, फिर उसके बाद अपनी औलाद के लिए। बाज़ दफ़ा औलाद की दुनिया में तो अपने से भी ज़्यादा फिक्र होती है, लेकिन क़यामत में जाके अपनी सबसे ज़्यादा होगी, औलाद की भी पीछे हो जाएगी। तो गम भी जो हैं या फिक्रें भी जो हैं ये शिफ्ट हो जाएंगी, वहाँ पे हर एक नफसी नफसी करेगा, वहाँ पे कोई नहीं कहे बच्चे बच्चे हैं, नफ्स नफ्स, अल्लाह मेरे या मुझे बचा ले। यहाँ पे तो हमसे पूछा जाए, हम कहते हैं हर माँ से पूछो तो वो कहते हैं बच्चों को पहले हमारे उनकी फिक्र है। तो इसलिए दुनिया की फिक्रात तो हैं ही हैं, इनके तो गम हैं ही हैं, इंसान के साथ परेशानियां लगी हुई हैं, लेकिन ये गम है जो कभी भी नहीं पीछा छोड़ता, और वो है अपनी आखरत का गम, उसकी फिक्र, और अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र। और ये अच्छा गम और फिक्र है, इसलिए कि ये होना चाहिए, क्योंकि वो हदीस मैंने आपको सुनाई भी है कि अल्लाह ताला दो गम और दो खौफ जमा नहीं करेगा, यानी जो यहाँ पे बेखौफ होके रहा वहां पे उसके लिए खौफ होगा, जो यहाँ पे खौफ में रहा कि पता ही मेरा क्या बनेगा, इस गम के अंदर रहा, उसको वहां पे अल्लाह ताला बेखौफ कर देगा, वहां पे उसके गम दूर कर देगा। तो वो कह रहे हैं ना अल्लाह ने हमारे गम दूर कर दिए, अब वहां पे तो हम इसी परेशानी में रहते थे कि पता नहीं क्या हमारा बनेगा, क्या हमारा बनेगा, सारी जिंदगी इसी परेशानी में गुजार दी ना, पता नहीं हम किधर होंगे। तो वो कितना सुख का सांस लेंगे ना जन्नत में आके, अल्लाह अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाहु अकबर। खुद सोचें कि एक बंदा सारी जिंदगी, ये वही कह सकता ना, सारी जिंदगी एक फिक्र के अंदर रहता है, एक परेशानी के अंदर रहा, उस वो कभी इससे खलासी पा ही नहीं सका। रातों को भी हमारे असलाफ के बारे में आता है, वो चैन से नहीं सो पाते थे, क्या जहन्नुम का खौफ उनको जगा देता था कि जहन्नुम जल रही है, हम कैसे चैन पाए, आए हम कैसे आराम से यहाँ पे रहें। वो रोते किस लिए थे, और उनको आग याद आती थी, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किस लिए रोती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था ना उनसे, क्यों रो रही हैं आप, एक दिन बैठी रोने लगी हुई थी, क्यों रो रही हैं? कहती हैं जहन्नुम की आग याद आ रही है। क्या आप अपने घर वालों को याद रखेंगे क्यामत के दिन? वो उनके रोने देखें किस बात पे थे, उनके गम किस बात पे थे। अब्दुल्ला बिन रवाहा जब रो रहे हैं, अपनी बीवी के गोद के अंदर सर रखा हुआ रो रहे हैं, अचानक से रोना शुरू कर दिया, बीवी भी रोने शुरू हो गए। पूछने लगे तुम क्यों रो रही हो? कहने लगे मैंने आपको रोते हुए देखा। इंसान को होता है ना, दूसरा कोई रो रहा हो तो इंसान को खुद भी रोना आ जाता है। तो कहते मैं भी रोने लग गई। कहते मैं तो इसलिए रोया कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हर एक को जहन्नुम के ऊपर से गुजरना है। हर एक को, सूरह मरियम में है ना, इमिन को मिल्ला बारिद हुआ, हर एक को गुजरना है उसके ऊपर से, कोई बचेगा नहीं। जहन्नुम के ऊपर सिरात होगा ना, पुल सिरात जिसको हम कहते हैं, उससे सबने गुजरना है। कहते मुझे नहीं पता मैं उससे बाहर हो पाऊंगा कि नहीं। तो ये चीजें उनको गमजदा रखती थी, उनको रुलाती थी, उनको रातों को जगाती थी। उनकी फिक्र ही ये थी, उनके गम ही ये थे। उन्होंने ये रोग लगाया हुआ था, जिसको कहते ना रोग लग जाना, ये रोग लगा हुआ था उनको। एक दफा और वह जो अपने ताबई हैं, वो अपने वालिद हज़रत ज़ुबैर से रिवायत करते हैं कि हज़रत ज़ुबैर कहते हैं कि मैं सुबह वो घर से निकला तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर सलाम अर्ज किया, तो सलाम अर्ज करता था। तो एक दिन मैं घर से निकला तो मैं गया कि भाई मैं उनको सलाम कर लूँ, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज में खड़ी थी और कुरान मजीद की आयत पढ़ रही थी, फ़मन्नल्लाहु अलैना वक़ाना अज़ाब अस्समूम, अल्लाह ने हम पर एहसान किया और गर्म जहरीली हवा के अजाब से हमें बचा लिया, सूरह तूर की आयत। यानी वो लोग इतने मशकूर होंगे ना कि अल्लाह तूने हमें हमारे पर कितना एहसान कर दिया, हमें बचा लिया आग से। वो जन्नत में चले जाएंगे ना तो वो उनको ये होगा कि कितना बड़ा अल्लाह तेरा एहसान है, क्योंकि जहन्नम तो सबने देख ली होगी, जब पुल से रात में से गुजरेंगे देख ही ली ना, या जब हशर के मैदान में जहन्नुम को घसीट के लाया जाएगा सबने देख ली, इसीलिए तो घुटनों के बल गिर जाएंगे और कहेंगे नफसी 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 नफसी, अल्लाह बचा ले अल्लाह बचा ले अल्लाह बचा ले, मुंह से कुछ और निकलेगा ही नहीं। तो उन्होंने विजुअल तो कर लिया हुआ, उनको पता है कि ये क्या चीज है, तो फिर जुबानों से यही निकलेगा ना, अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है, तूने हमें बचा लिया, अल्लाह तेरा कितना बड़ा। तो कहते रोती जा रही थी और ये तिलावत करती, रोती जा रही थी और ये तिलावत करती जा रही। कहते मैं खड़ा रहा कि भाई अब सलाम फेरेंगी, अब खत्म करेंगी। कहते यहां तक मैं थक गया तो मैं चला गया बाजार, वापिस आया हूं तो देखा तो अभी तक खड़ी नहीं है, वो ही आयत पढ़ पढ़ के रोती जा रही। अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल कर देना जिन पे तू ये एहसान करे कि वो बच्चे हैं अजाब से। वो लोग देखते थे ना, जब कोई चीज भी, कोई आग को भी देखते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे वो लोहार की दुकान से गुजर रहे थे, आग को देखा तो वो आग भी उनको क्या याद कराती थी, जहन्नुम याद करा देती थी। खड़े होकर रोना शुरू कर देते कि अल्लाह इसे बचा देना। तो उनके लिए ये एक रोग था। वो दुनिया में बेखौफ होके नहीं जिए, उन्होंने गम लगाए हुए थे। तो उस दिन कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इससे आजादी दे दी। जिन्होंने गम नहीं भी लगाए हुए थे वो कयामत के दिन देख लेंगे ना जब जहन्नुम को, और यहाँ जो जहन्नुम में चले गए उसमें से निकल के आए वो भी कहेंगे कि शुक्र है अल्लाह तेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है। इसीलिए मैंने आपको रिवायत सुनाई है ना कि वो जालिम उन्नी नफसी भी यही कहेंगे, इसलिए कि वो उनको जहन्नुम से आजादी मिल गई। वो दरमियाने वाले भी कहेंगे इसलिए कि वो हिसाब किताब से गुजर के भी चलो यहां तक पहुंच गए, और कहीं कहीं उनको भी दुनिया में इसकी याद आ ही जाती थी। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, बेशक हमारा रब बड़ा ही बख्शने वाला है, बड़ा कदरदान है। यकीन करें इस दुनिया में कोई भी अशकूर नहीं है, कोई भी नहीं है। किसी रिश्ते को आप देख लें, शकूर तो बहुत बड़ी बात है, वो तो अल्लाह ताला की सिफत है। कदरदान भी कोई नहीं आपको मिलेगा जैसी कदरदानी अल्लाह ताला करता है। हम फिर भी अपने आप को मार लेते हैं किसी के पीछे, कितना करते हैं कि पता नहीं ये हमें अच्छा समझ ले, ये बस अब हमारे से राजी हो जाए, वो फिर भी नहीं राजी होते। लेकिन अल्लाह ताला अशकूर है, एक तो वो बख्शने वाला भी है और कदरदानी। बख्श क्या देगा, गुनाहों को बख्श देगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं हमारा रब ने बख्श भी दिया, और शकूर हमारी छोटी छोटी नेकियां थी ना उनकी भी कदरदानी कर दी। यानी आप मिसाल के तौर पे आपने किसी को कहा जाओ बेल बजी या दरवाजा देख के आओ, अभी तो छोटे से काम है, हमने किसी को इसके ऊपर शुक्रिया भी नहीं हम कहते, उनसे तो छोटी सी बात है, इसमें कौन सी शुक्रिया करने की बात है। लेकिन सोचें, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने फरमाया जर्रे के बराबर नेकी भी अल्लाह ताला उस दिन दिखा देगा। इसका मतलब अल्लाह ताला ने वो भी काउंट की भी है, जर्रे के बराबर नेकी भी वो तोल देगा उस दिन मीजान में। इसका मतलब अल्लाह ताला ने उसको भी हमारे लिए महफूज किया हुआ था, जर्रे के बराबर नेकी को भी। ये तो बड़ी हो गई नेकी, जाओ दरवाजे पे देख के आओ कौन है, ये तो फिर भी किसी को चल के जाना पड़ा, जर्रे के बराबर नेकी भी। हम नहीं किसी की कदर करते इस नेकी पे, किसी ने हमें मुस्कुरा के देख लिया, हाँ इसमें कौन सी ऐसी बात है, ये बड़ी कोई कौन सी बड़ी बात है। वो पानी ला के दो, किसी ने पानी पिला दिया, चलो अच्छा ठीक है। कुत्ते को पानी पिलाने पे पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो गए, हम कहेंगे अच्छा चलो थैंक यू, चलो भाई ठीक है थैंक यू कर दिया, काफी हो गया ना। उसके ऊपर हम उसको इनाम थोड़ी देने खड़े हो जाते कि तू मेरे लिए पानी लेकर आया, ये ले इनाम। कभी ऐसे देखा है आपने, तुमने मुस्कुरा के देखा ये ले तेरे लिए इनाम। अल्लाह ताला तो इनाम देता है, 10 नेकियां उसके ऊपर जो एक नेकी करे, 700 गुना इसके ऊपर नेकी मिलेगी, बेहिसाब नेकी मिलेगी। इस तरह के वादे हैं एक नेकी के ऊपर, वो तो जर्रे बराबर ही नेकी है ना। कुत्ते को पानी पिला दिया, वो खुद पीने के लिए खड़ी थी, उसने उसको पिला दी, एक नेकी थी ना, सारी जिंदगी के गुनाह ही माफ हो गए। वो अल्लाह ताला ऐसा शकूर है, इंसान उस दिन देखेगा अरे ये तो मैंने छोटी सी ये छोटी सी नेकी ऐसी की थी, मैंने चलते फिरते ही ऐसे ही जाते भी कर ली थी, ये तो कोई बड़ी चीज ही नहीं थी, अल्लाह तूने उसको भी काउंट कर लिया, अल्लाह ताला तूने उसके ऊपर भी मुझे नवाज दिया। तो कितने शुक्र के जज्बात होंगे, कितने ज्यादा इंसान एहसान मंद होगा कि ऐसे ऐसी तो कदरदानी मैंने कभी देखी नहीं, किसी ने भी नहीं कभी मेरी ऐसी कदरदानी की। आप अपने आप को घुला देते हैं बस रिश्तों के पीछे, कोई कदरदानी नहीं होती, बल्कि आगे से ये सुनने को मिला तुमने हमारे लिए क्या किया, ऐसा क्या कर दिया तुमने, ये सुनने को मिल जाता है। लेकिन वो एक रब वो जात है, फिर भी इंसान बखील है उसके रास्ते में नेकी करने को, उसकी इताअत करने को, जिसने इतनी कदर करनी है उसकी हमें परवाह नहीं। वो जो कदर ही नहीं करते उस सारी जिंदगी हम उनके पीछे भागते रहते हैं, हम उनको राजी करने की कोशिश करते रहते हैं, कभी उस रब को राजी करने की तो कोशिश करते जो इतना कदरदान है, वो अशकूर है। क्या छोटी छोटी चीजें, एक मुस्कुरा भी दोगे तो वो भी तुम्हारी नेकी लिखी जाएगी, एक जर्रा भी, एक खजूर आप सबसे तो फरमाए, एक खजूर भी अल्लाह के रास्ते में दे दोगे अल्लाह ताला उसको पाल के वो पहाड़ के बराबर कर देते। एक खजूर क्या चीज है, क्या वैल्यू है उसकी। आज गरीब से गरीब बंदे के पास भी एक छोटी सी चीज तो होती है, खजूर से बताया गया, क्योंकि खजूर उस वक्त एक बहुत ही आम सी चीज थी, एक बहुत ही यानी एक बड़ी चीज नहीं थी, ऐसी कोई महंगी या कोई बड़ी कमोडिटी नहीं थी, खजूर तो हर एक के पास ही हो जाती थी। तो एक यानी जैसे आप समझ लेंगे आपके घर में एक रोटी का निवाला, एक लुकमा, एक लुकमा भी तुम अपनी बीबी के मुंह में डालोगे तो वो भी सदका है। अल्लाह अकबर, एक लुकमा अपने बच्चों पे भी खर्च करोगे वो भी तुम्हारी नेकी लिखी गई। ऐसा कोई कदरदान आपको मिलेगा, फिर क्यों हमारे अंदर उसके रास्ते में ही काम करना इतना मुश्किल लगता है कि नेकी मुश्किल लगती है, बाकी लोगों के लिए मरते रहो सारा वक्त वो नहीं मुश्किल लगता, बाजारों की खाक छानते रहते हैं वो नहीं मुश्किल लगता, शादियों के लिए इतना अपने आप को हलकान करते हैं वो नहीं मुश्किल लगता, ये नेकी का काम करने में गिन गिन के हाय मैंने आधा घंटा लगा दिया, मैं तो आज लेट सोई थी पढ़ती रही, अब मैं फलां के लिए देखो मैं ये काम करने के लिए गई उसकी खिदमत के लिए, फलां को मैंने इतने पैसे दे दिए सदके में, उनको गिन गिन के रखा हुआ छोटी छोटी चीजों को, लोगों के लिए बड़े बड़े काम करके भी कोई शुमार नहीं, और अल्लाह के रास्ते में एक एक छोटा छोटा काम करना भी इतना हमारे लिए भारी पड़ जाता है। देख लेना, वही जो मैं आपको कह रही हूँ कि इस दुनिया में ही देख लें कि हम किस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं नेकियों के मामले में। वही आपको बता देगा कि हम मुक्तसिद हैं, हम साबिक हैं, या हम जालिम हैं, किस कैटेगरी में हम, यहाँ पे ही हम किस जगह पर अपने आप को समझते हैं कि हम हैं, नेकियों में हमारी क्या दौड़ है, किस स्पीड पे हम दौड़ रहे हैं। साबिक तो बड़े तेज दौड़ने वाले होते हैं, नेकी का कोई मौका हाथ से ना चला जाए। गुनाहों से ऐसे बचते हैं जैसे कोई आग से बच रहा हो। मैं तो कहती हूँ हम कोविड से ज्यादा बचते हैं, किसी को कोविड हुआ हो तो उसके करीब नहीं जाना, उसके घर भी नहीं जाना, हमें लग ना जाए, लेकिन गुनाहों से नहीं इस तरह बचते। गुनाहों में अंदर जा जा के बैठते हैं ताकि हम भी उसके अंदर ही शामिल हो जाए। तो वो उस दिन कहेंगे हमारा रब तो कितना गफूर है, कितना शकूर है, उसने हमारे ऊपर से ये इतना बड़ा गम दूर कर दिया, हमें गम से निजात दे दी। तो गम से अगर कोई समझता है इस दुनिया में निजात मिल जाएगी, इस दुनिया में नहीं निजात मिलनी। कितना भी आपके पास पैसा हो जाए, बड़े पैसे वाले लोग भी वो भी गमजदा ही होते, बड़ा कितनी ही ऊंची पोजिशन पे पहुंच जाए, कोई बादशाह ही बन जाए, उसको भी गम लगा हुआ है कोई ना कोई। यहाँ पे इस दुनिया में अगर आप सोचते हैं ये दुनिया जन्नत बन जाएगी तो यहाँ से हम गमों से आजाद हो जाएंगे, वो नहीं होगा। आप पैसा हाँ कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से गमों से आजादी नहीं मिलती। तो गम से आजादी तो उसको ही मिलेगी जो जन्नत में पहुंच जाएगा, जहां पे कोई गम नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। इवन उसकी भी नहीं परेशानी होगी और उसका भी गम नहीं होगा जो जहन्नुम में अगर कोई रिश्ता जल रहा होगा, उस गम से भी अल्लाह ताला आजाद कर देगा। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला शकूर भी है इस नाम को सामने रखते हुए। फिर ये दुआ करते हैं हम अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे गुनाह तो बहुत ज़्यादा है अल्लाह ताला, लेकिन हम तुझे ये नहीं कहते कि हमने नेकियां बड़ी की हैं तो हम जन्नत में जाने की दुआ कर रहे हैं, तो हमें जन्नत में दाखिल कर देना क्योंकि हम नेक बहुत है। हम इसलिए तुझसे जन्नत मांगते हैं कि तू अशकूर है या अल्लाह, तू अशकूर है, तू बड़ा ही कदरदान और तू अलगफूर है या अल्लाह। ये दोनों चीजें होंगी तभी इंसान जन्नत में जा सकता है ना, कि अल्लाह ताला गफूर है ना तो उसने गुनाह बख्श दिया, और शकूर है कि छोटी छोटी भी हमारी बेकार किस्म की नेकियां भी वो कबूल कर ले। वो कदरदान है ना, इतनी कदरदानी की उसने, क्या वो कोई इंसान नेकी कर सकता है जिसके बदले में उसको जन्नत जैसी नेमत मिल जाए, जन्नत जैसी लग्जरीज मिल जाए, वहां की जो इनामात है वो मिल जाए। किसी का अमल भी वाकई कीमत नहीं बन सकता जन्नत की जितनी आला अल्लाह की जन्नत है। कि वो है ना कि एक जन्नती जो है अगर झांक भी ले दुनिया के अंदर, झांक भी ले, तो उसके जो सर का ताज है उसकी, या उसके जो रोशनी है उसके, इवन चेहरे की रोशनी, उससे दुनिया रोशन हो जाए। और उसके हदीस में आता है कि जन्नती अगर एक जन्नती दुनिया में झांक ले तो उसके सिर्फ कंगन सिर्फ इतना रोशन होगा कि उससे सूरज से जैसे सूरज की रोशनी को वो मंद कर दे, मिटा दे, जैसे सूरज के सामने सितारे जो होते हैं वो मिट जाते हैं ना। इस वक्त भी सितारे हैं आसमान पे, लेकिन आपको कोई नजर आ रहे हैं क्योंकि सूरज है ना, तो वो बिल्कुल मिट गए। इस तरह से सूरज की रोशनी को भी वो मांद कर दे एक कंगन, सोचे जरा। अल्लाहु अकबर। ऐसे तो कंगन उनको पहना जाएंगे और वो रेशम होगा जो कि जैसे दुनिया के अंदर तो रेशम कीड़े बनाते हैं, वो रेशम कीड़ों से नहीं बना होगा, सिर्फ नाम की मुमासलत है, वरना कोई भी एक सिमिलैरिटी नहीं है, कहां वहां का रेशम और कहां दुनिया का रेशम। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
वल्लजी औहैना इलैक ربك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور